गुरु ने चेले से कहा, लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा, यह बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है, समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ है, जरा दिया तो बुझा दे बछुआ। बछुआ बोला, आप आंख बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया, समझ लीजिए। अंत में गुरु ने कहा हार कर कि उठ किवाड़ तो बंद कर। शिष्य ने कहा, गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, दो काम मैंने किए, एक काम तो आप कर लीजिए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 18th May 1969। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हो तो कितना ध्यान देते हैं, आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए क्या हो जाता है, मुरली तो सुनी होगी ये, रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर होता है तो उस रिकॉर्ड को क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है वह तो वह रद्द ना हो जाए, रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन आता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने हैं, सारी सृष्टि की आत्मा चारों ओर से हमें घूर घूर कर देख रही है। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 2008। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है लेकिन बीच में अलबेलेपन की माया बहुत आती है, अभी उसकी विदाई करना है। अलबेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आह्वान, ठीक है ना, करेंगे ना, अलबेलेपन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलबेलेपन के बहुत खेल देख लिए, अभी सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाओ। पुरुषार्थ में सबसे एक बड़ी बाधा कौन सी है? अलबेलापन। आज नहीं, कल बाद में देखेंगे। दो काम तो मैंने कर लिए गुरुवर, कृपया एक तो आप करो। सब कुछ मैं ही करूं? तो वैराग की चर्चा करते करते आज का है 9वां दिन, आहार की चर्चा 9 दिन की, वैराग की भी चर्चा 9 दिन। और वैराग स्वतः आ जाए जब हमें चीजों की व्यर्थता का पता चलता है, तो वही वास्तविक वैराग है। जब चीजों को हम नहीं छोड़ते, चीजें हमें छोड़ देती है अपने आप, वैराग वैसा ही हो जैसे पत्ते जब सूख जाते हैं झाड़ से तो क्या होता है, गिर पड़ते उस तरह का वैराग हो, सहज स्वाभाविक, जिसमें लगे ना कि हमने कुछ छोड़ा है, चीजें इतनी व्यर्थ हो चुकी हमारे लिए कि वो स्वतः ही छूट गई है। और वैराग की इस यात्रा में एक बहुत बड़ी बाधा कौन सी है? आलस। सुस्ती का मीठा रूप आलस, एक मुरली है ऐसी, इस आलस को हटाना है। और जब तक ये आलस नहीं हटेगा तब तक इस मार्ग में कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बाबा ने आज मुरली में कहा, तुम रूहानी यात्री हो, दिन रात तुम्हें यात्रा का ही ख्याल रहना चाहिए। वैराग भी एक यात्रा है, ब्रह्मचर्य भी एक यात्रा है, पुरुषार्थ भी एक यात्रा है, योग भी यात्रा है, ज्ञान भी एक यात्रा है। कल ज्ञान जहां तक समझा था, आज उसी ज्ञान को और नए रूपों में, नए अर्थों में, नए आयामों में समझना है, क्योंकि ज्ञान विराट है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैंने सब कुछ जान लिया। कल तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे ही दिया, कितना समझे हो तुम, एक आना 1 रुपए में। और आज का चल कैसे रहो, चाल तुम्हारी कौन सी है? केकड़े वाली चाल, ठंडे हो, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है तो क्या करो वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, चाय का मजा रहे, प्लेट पकोड़े से सजा रहे, मुंह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, माँ की लथाड़ हो या बाप की दहाड़ हो, तुम निडर डटो डटे रहो, रजाई से उठो नहीं, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, मुंह भले गरजते रहे, डंडे भी बरसते रहे, दीदी भी भड़क उठे, चप्पल भी खड़क उठे, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, प्रात हो या रात हो, संग कोई ना साथ हो, रजाई में घुसे रहो, तुम वही डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, एक रजाई लिए हुए, एक प्रण किए हुए, अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, यत्न कर निकाल लो, ये समय तुम निकाल रो, ठंड है यह, ठंड है यह, बड़ी प्रचंड है, हवा भी चला रहे, धूप को डरा रही, वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, रजाई धारी सिंह दिन भर, जैसे वो दिनकर है ये दिन भर रजाईधारी वैराग्य के भी इस मार्ग में सबसे बड़ी एक बाधा जो है वो है हमारे ही अंदर राग है, किसके प्रति? आराम के प्रति, नींद के प्रति, हमारे सुरक्षा क्षेत्र के प्रति। उस दिन भी कहा था ये मार्ग है असुरक्षा का, किसमें प्रवेश करना है? असुरक्षा में, जहां किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं, उस मार्ग पे निकल पड़ना है। मार्ग बना हुआ नहीं है, जब हम चलेंगे तब पगडंडियां तैयार होगी। लिव डेंजरसली, बहुत सारी चीजें करो जो अब तक कभी नहीं की थी, जिसे हमने कहा था ये हमारी नहीं है, दूसरे करने वाले, दूसरों को करने दो। आज की मुरली में तुमने प्रण किया है, कौन सा? निर्विकारी होने का, बहुत बड़ा प्रण है। वो लोग यात्राओं पर जाते हैं, रहते एक दो मास, फिर विकारों में गिरते, फिर नदी स्नान करने जाते। तुम्हारा प्रण बहुत बड़ा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, ये यात्रा बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा है छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है। ये वैराग की यात्रा है, ये याद की यात्रा है, ये ब्रह्मचर्य की यात्रा है, ये पवित्रता की यात्रा है, ये निर्विकारी होने की यात्रा है। बाप आए हैं तुम्हें केकड़े से देवता बनाने, अपने वैराग को तीव्र करते जाना है। बिना वैराग के अध्यात्म में कोई गति नहीं है और ना ही कोई उन्नति है। जितना चीजों से हम विरक्त होते जाएंगे, अनासक्त होते जाएंगे, उतनी ही तीव्र पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ेंगे। बंगाल में एक संत था, वैष्णव संत, 19वीं शताब्दी, लाल बाला। आधी उम्र गुजर गई, 60-70 वर्ष का हो गया, फिर भी अभी तक संसार में डूबा था। मन में विचार था भगवान का थोड़ा बहुत, परंतु तीव्र वेग नहीं था। एक बार वो जा रहा था तो वहाँ एक धोबी और उसकी बेटी थी छोटी सी। वो धोबी की बेटी अपने पिता से कहती है, पिता जल्दी करो, वासना को आग लगाओ। बंगाल में वासना शब्द के दो अर्थ है। एक अर्थ होता है वो जो केले के छिलके या पत्ते होते हैं उसको वो लोग जलाते हैं, उसकी राख करते हैं और उसको साबुन के रूप में प्रयोग करते हैं उस जमाने में, उसका एक अर्थ था वासना। तो उस छोटी बच्ची अपने पिता से कहती है, पिताजी जल्दी करो, वासना को आग लगाओ, क्योंकि साबुन बनानी है। ये व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है लाल बाला, वो किसी और दूसरे अर्थों में उसको लेता है। एकदम से तीव्र वैराग जागता है कि मैं अब तक जीवन में क्या कर रहा हूं, अब तक वही विषय भोगों में डूबा हुआ हूं, मुझे करना क्या है? जीवन अब मृत्यु की तरफ जा रहा है, काल के गाल में। और तीव्र वैराग उठता है मन में, तुरंत सब कुछ छोड़ देता है। किसी के लिए एक शब्द ही काफी है। कल भी सुना था, राजकुमार एक ही प्रवचन में वैरागी बन गया और बाकी सब लोग बैठे हैं, सिर हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सत्वचन। वैराग बिना चिंतन के नहीं आता है, निरंतर संसार की अनित्यता का चिंतन किए बिना वैराग नहीं आता है। निरंतर वो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं कितनी व्यर्थ है और कितनी भ्रमपूर्वक है, जब तक वो सारे भ्रम नहीं टूटते और डिसइल्यूजनमेंट नहीं होता तब तक आगे गति नहीं है। वहीं रहेंगे, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही दिनचर्या, वही नुमा शाम योग, वही भोजन, वही सारा मन का खेल, वही नींद, सब कुछ वही 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 वही, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और इतने सालों से सेम कोलू की बैल की तरह घूम रहे, नयापन कुछ है ही नहीं। वही आलस, वही कारण, वही राग, तीव्र विराग जागे मन में। जो चीज अब हम कर रहे हैं वो एकदम नई दृष्टि से दिखाई पड़े, ये तो व्यर्थ है, क्यों इस संबंध को निभाए जा रहा हूं, किस लिए, ये तो व्यर्थ है, इसका तो बीज ही व्यर्थ है, तब वैराग जगेगा। तो वैराग में सबसे बड़ी बाधा है आलस। किसके प्रति राग? आराम के प्रति राग। तुम्हारी नींद फिट जाना चाहिए, विचार सागर मंथन करो आज की मुरली जैसे बाप करते हैं। वैराग की कुछ स्टेजेस है, चार स्टेजेस की नहीं है। जो पहली स्टेज है इसको अलग अलग संस्कृत के नाम दिए गए हैं। ये जो पहली स्टेज है यतमना, ये वो स्टेज है यतमना कि जिसमें व्यक्ति को ये दिखाई पड़ता है कि मेरे सभी दुखों का कारण मैं खुद हूं। ये इनिशियल स्टेज है वैराग की। ये सारा जो हो रहा है ये मैंने ही अपने अंदर एक मेंटल पैटर्न क्रिएट किया है, और जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं। हम सोचते हैं उसके वजह से मुझे दुख हो रहा है, पर उसके वजह से मुझे दुख नहीं हो रहा है। मेरी ही आसक्ति है, मेरे ही डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है जो मुझ तक वापस आ रही है और दुख का रूप धारण कर रही है। यतमना ये अवस्था है वैराग की, जहां पर ये डीप रियलाइजेशन व्यक्ति को होता है कि जो कुछ भी हो रहा है सम टोटल मेरे साथ, या फिर मेरी जो अभी अवस्था है ज्ञान योग की, वो मेरे ही वजह से है। ना मेरे डिपार्टमेंट की वजह से, ना इंचार्ज की वजह से, ना साथियों की वजह से, ना जूनियर्स की वजह से, ना स्टूडेंट्स की वजह से, किसी चीज की वजह से। इसलिए मुझे ही, ना किसी स्थान की वजह से, इसलिए किसी स्थान को बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला। थोड़े समय के लिए शांति मिलेगी। लोग मधुबन में आते हैं तो बहुत शांति का अनुभव करते हैं, एकदम अशरीरीपन का अनुभव करते हैं, बाबा की याद में खो जाते हैं। पर वो बाबा की याद, वो अशरीरीपन, वो शांति मधुबन की है, तुम्हारी नहीं। यहां से जाते ही तुम फिर अकेले हो जाओगे जैसे थे, अगर इसको अपने अंदर समाया नहीं तो। इसलिए लोग मधुबन में आते बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यहां से जाने के बाद कितना समय असर चलता है, किसी का 3 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 1 महीना भी चलता होगा, किसी का 6 महीना भी चलता होगा। बाद में वही ढीला ढाला पुरुषार्थ, जैसे कुछ खाया ही नहीं है, जैसे ताकत ही नहीं, आज की मुरली ऐसे चल रहे हैं जैसे ठंडे है। ये सबसे पहली स्टेज है यतमना, जिसमें ये रियलाइज होता है कि मैं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। यहां दूसरों का कोई ख्याल ही नहीं है, दूसरों का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। दूसरी अवस्था, इसको कहते हैं व्यतिरेका, व्यतिरेक अवस्था में। हाँ, इसको कैसे जीते? पहला जो है यतमना, इसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। किसी को माफ़ करना पड़ेगा, किसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, किसी के प्रति धन्यवाद का भाव लाना पड़ेगा, ये सब करके ये स्टेज तक आया जा सकता है, यतमना तक, कि जिसमें हम समझे कि ये सब अब जो कुछ हुआ है मेरे वजह से, मैं हूँ। फिर व्यतिरेक, व्यतिरेक में इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, या फिर कहो इमोशनल न्यूट्रलिटी। अब तक किसी के प्रति राग था, किसी के प्रति द्वेष था, आज की मुरली में है ना, जिससे बनती नहीं है उसका मुंह देखते हैं तो क्या हो जाता है, सेवा से किनारा कर देते हैं, या फिर सेवा में, क्या कहा बाबा ने, कोई एक शब्द है, जिससे बनता नहीं उसको, उसका देखते ही सेवा का ख्याल ही चला जाता है, और फिर बाद में कहा दिल नहीं लगती है, सर्विस का ख्याल ही उड़ जाता है। सर्विस में फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट दिल नहीं लगता, ये क्यों, मन मुटाओ। ये इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहली रियलाइजेशन है माफ कर दो, माफी मांग लो, धन्यवाद, ये सारे चीजों को यूज करके इस अवस्था तक पहुंचना है कि जो कुछ भी हुआ है मैं, और मैं केवल मैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल ये सब चीजों के लिए, और मुझे ही ठीक करना है। मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वो जब माफी मांगेगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। जैसे हम ये समझते हैं कि हम ही राइट है, वो भी यही समझता है कि वो राइट है। इसके लिए कहा जाता है सभी रिलेशनशिप्स में एक नियम है, आई एम रॉन्ग। चाहे कुछ कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, अगर उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, जो इमोशनल फ्रैक्चर्स हुए हैं उसका रूल क्या है, आई एम रॉन्ग. इसके लिए तो महा हिम्मत चाहिए, छोटी मोटी हिम्मत नहीं चाहिए. जैसे बॉस के लिए दो रूल है ऑफिस के, पहला रूल बॉस इज ऑलवेज राइट, दूसरा रूल इफ बॉस इज नॉट राइट फॉलो रूल नंबर वन. तो यह तो मना तक पहुंचने के लिए सब कुछ अपने कंधों पर लेना है, तो ही इस अवस्था, ये वैराग्य की यात्रा है. दूसरा है व्यतिरेखा, व्यतिरेक में धीरे धीरे फिर राग, राग से तो मुक्त होता है ये व्यक्ति, द्वेष से भी मुक्त होता है फिर, क्योंकि इमोशनल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल तक पहुंचना है. फिर किसी के प्रति ना राग है ना किसी के प्रति द्वेष है, सबके प्रति समभाव है, सब समान है, किसी को ज्यादा महत्व किसी को कम महत्व, सारे धीरे 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 धीरे. ये बड़ी ऊंची अवस्था है, तुरंत नहीं आएगी. साधना करते 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 योगी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि राग वाली चीजें दुख तो देती है पर द्वेष भी नहीं होना चाहिए किसी, ये अच्छा लगता है. ये लाइक्स और डिसलाइक से परे निकल जाना. व्यतिरेक संस्कृत शब्द है, उसमें ये वैराग की ऑलमोस्ट जितनी वैराग की किताबें सभी में ये चार अवस्थाओं का वर्णन है. स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था की ओर बढ़ता हुआ ये कदम है व्यतिरेक, इमोशनल न्यूट्रलिटी, जिसमें हम धीरे 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 अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, पैटर्न को समझने लगते हैं, क्या होता है कैसे होते हैं इमोशंस का कैसा खेल है. अचानक आवेग, अचानक से प्रेम किसी के प्रति, अचानक से घृणा किसी के प्रति, अभी तक निर्विकारी थे, अचानक काम का आवेग उठता है, अचानक क्रोध, अचानक ईर्ष्या, क्यों कैसे, अचानक पैनिक अटैक्स. कई लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, एकदम से घबराहट, अभी तक बैठे हुए एकदम इतनी घबराहट हो जाती है, कारण कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बैठे और एकदम घबराहट, सीधा हॉस्पिटल, ECG वो एडमिट, एक घंटे के बाद ठीक, छुट्टी चाहिए. क्या हो गया था पता नहीं, क्या हो गया था, पैनिक अटैक्स, एकदम इतना भयंकर पैनिक अटैक कि पूरा चक्कर खा के गिर जाते, फेंटिंग. कभी भी आ जाते, हर 15 दिन में एक पेशेंट तो ऐसा आता ही है, स्ट्रेचर पर बेहोश, उसके साथ 10-12 रिश्तेदार कैजुअलिटी में आता है, क्या हुआ क्या हुआ, उसको कुछ सुंघा देते हैं, एकदम उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है अभी जाओ घर. पैनिक अटैक्स, हिस्टीरिया, कन्वर्जेंस, इसको कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, हिस्टीरिया, वो रियल नहीं होते, लोकल भाषा में कहो तो नौटंकी बहाने, ये सब होता है ये. पर ये शब्द बोलने नहीं होते. बुरा लगता है अगर किसी पेशेंट को कहो कि तुम्हारी ये जो बीमारी है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, ये ना साइकोलॉजिकल है, एकदम नफरत भरी निगाहों से देखने लगता है वो, जैसे उसको कहो. ये जो भी है, दीज आर नोन एज साइकेट्री में, इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर्स कहते हैं, हिस्टीरिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तो फिर ऐसा कुछ करता है वो, ताकि सबका क्या हो जाए, एकदम सब लोग उसका अटेंशन, हम भी कुछ है हमेशा, तुम भी बीमार पड़ोगे, हम भी बीमार पड़ते हैं. अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ये सारा, क्योंकि इससे अंदर का खालीपन है, कैसे भरे, कुछ ना कुछ तो करती है आत्मा उसको भरने के लिए, तो ये भी उसमें से एक है. व्यतिरेखा अर्थात इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ चलना है, स्टेबल हो जाए इमोशन, एक रस मूड, एक रस. अगला है एकेंद्रिय, फीलिंग प्रूफ कह सकते हैं, बट फीलिंग स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ फीलिंग्स. अगला है एकेंद्रिय, एकेंद्रिय जो अवस्था है, तीसरी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अब बहुत स्टेबल होने लगता है, बहुत बहुत स्टेबल, मूड फ्लक्चुएशंस ना के बराबर है, एक रस, जो मूड सुबह है वही दोपहर को है, वही रात को है, दिन भर में 1000 चीजें हो रही है, फिर भी एकदम स्टेबल है, वो एकेंद्रीय अवस्था है। और लास्ट अवस्था जो है इसकी, वशीकर, ये सबसे फाइनल स्टेज है, सुप्रीम वैराग, हाईएस्ट स्टेज है वैराग की, वशीकर वैराग सबसे ऊपर, जिसमें अभी साधना करते करते करते, इमोशंस पर काम करते करते, मेंटल पैटर्न को समझते समझते, चित्त और चित्त की वृत्तियों को समझते समझते, सबके प्रति साक्षी भाव उत्पन्न हो गया है। जो भी उत्पन्न हो रहा है मन में, पता है ये अनित्य है, थोड़ी देर रहेगा चले जाएगा, और उसको पता है अभी मेरे मन में क्रोध आ रहा है, वो क्रोध को देखता है, आया और चला गया, स्पर्श नहीं कर पाता उसको, इतनी साक्षी भाव। वृत्तियां, बहुत सारी वृत्तियां हैं, 54 प्रकार की वृत्तियां अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग गिनाई हुई है, चित्त और चित्त की वृत्तियां। आज की मुरली में एक बहुत ड्रामेटिक स्टेटमेंट है नया, आत्मा में क्या है, मन बुद्धि और चित्त, अर्थात मन से चित्त अलग है। इस पर थोड़ा चिंतन करो आज। अभी तक तो हमेशा कहते आए मन बुद्धि संस्कार, आज की मुरली में है मन, आत्मा में क्या है, मन बुद्धि और चित्त, चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। पतंजलि योग सूत्र में योग की परिभाषा क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, ये है योग। मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्त, ये जो भटकना है चित्त का, उसको स्थिर करना, ये योग है। तो देयर इज नो इंग्लिश वर्ड, जैसे संस्कार के लिए कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, जैसे धर्म के लिए कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, जैसे वृत्ति के लिए कोई इंग्लिश शब्द ही नहीं है, जो कुछ है वो सारे झूठे है, वो कंप्लीट नहीं है, वो बन ही नहीं सकते, बना ही नहीं जा सकते, वो ही है। संस्कार को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, धर्म का क्या ट्रांसलेट, धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन दूसरा है, धर्म अलग है, वृत्ति अलग है, स्वभाव का क्या ट्रांसलेशन है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। संकल्प का क्या ट्रांसलेशन है, थॉट, रिजोल्यूशन, ओथ, प्लेज, कोई भी नहीं। संस्कृत के और कुछ हिंदी के ऐसे शब्द है जिनको कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, अनट्रांसलेबल है वो। उस पर एक क्लास थी कभी। तो वैराग इन अवस्थाओं से गुजरता है, पहले अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माफ कर दो, माफी मांग लो, दूसरा न्यूट्रल में आना है कि जो कुछ हो रहा है, इसलिए वो जो अभ्यास है बॉडी स्कैन का, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है। एक घंटा ये अधिष्ठान तो होना ही चाहिए, अपने कमरे में बैठ कर लॉक कर दो खुद को, ना अभी हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, बिल्कुल लॉक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, देखते जाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, सब अनित्य है। और जब ये देखने लगोगे, श्वास, श्वास को भी आ रही है जा रही है, दो देखने के बाद फिर थर्ड स्टेज है मन, चित्त और चित्त वृत्ति, सतिपट्ठान, ये चारों आते हैं। फिर देह और देह पर उत्पन्न संवेदनाएं, श्वास की अनित्यता, फिर मन की अनित्यता, चित्त की वृत्तियों की अनित्यता, सब कुछ अनित्य अनित्य, और योगी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। उसे फिर कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती है, प्रकृति भी आकर्षित नहीं करती, कुछ भी आकर्षित नहीं करता, वो भी एक आकर्षण है, पर वो संसार के आकर्षणों से थोड़ा ऊपर है, अच्छा है, जो भगवान की ओर ले जाने वाला है। फिर धीरे धीरे योगी देखा होगा एक ही गुफाओं में बैठे रहते हैं, क्या उन्हें इच्छा नहीं होती है, बाहर इतना अच्छा मौसम है। कोई इच्छा नहीं है योगियों को, कुछ भी नहीं करना है उनको, बस बैठे हैं। तिब्बत के बुद्धिस्ट योगी दीवार को देखकर बैठ जाते हैं योग में, वो उनके मेडिटेशन में, योग तो नहीं कहते वो लोग, ध्यान कहते, बस कुछ भी देखना नहीं है, चुपचाप। वो कहते हैं कि खुले में ध्यान नहीं करना है, नहीं तो ध्यान आकर्षित होता है इधर उधर, बंद कमरों में, शून्यागार, बंद कमरों में ध्यान करते, इतना संसार में क्या कुछ करते हैं लोग। तो वैराग धीरे 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 अलग अलग स्टेजेस थूल जाते रहे, और फिर जितनी अंतर्मुखता, एकेंद्रीय अर्थात एक ही इंद्रिय पर एकाग्र हो जाना, जैसे ध्यान में बैठते इसमें योगी, और मेरी सबसे चंचल होने वाली इंद्रिय कौन सी है, बस उसी पर ध्यान करते रहो, आंखें हैं बस आंखों पर ही ध्यान करते, हाथ है, क्या है जिसमें सबसे ज्यादा हलचल है, सबसे ज्यादा इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है उस पर ध्यान करके उसको स्थिर करना, एक इंद्रिय। और लास्ट परम वैराग, सुप्रीम वैराग। इसमें व्यक्ति फ्री हो जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिर। तो ये सब में बाधा कौन सी है, फिर उसी टॉपिक पर आते हैं, आलस, अलबेलापन, आरामदायी जीवन के प्रति लगाव, कंफर्ट जोन के प्रति लगाव। हम उसी क्षेत्र में उसी स्थान पर वही दिनचर्या के साथ जीना चाहते हैं, कोई हमें कुछ कहे नहीं, चुपचाप हमारा जो चल रहा है वही चलते रहना चाहिए, हमारे आराम में कोई दखलंदाजी ना करे, उस बीच में कोई सेवा हम नहीं कर सकते, वो हमारे आराम का टाइम है। जब तक हलचल नहीं है तब तक पुराने पैटर्न्स टूटते नहीं है। तो क्या किया जाए, जो इस आराम से हमें, इस आलस से हमें मुक्त कर दे और हम वैराग की यात्रा तीव्रता से करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला एक टेक्निक जो बताई जाती है उसको कहते हैं टू कॉलम टेक्निक। क्या करते हैं उसमें, दो कॉलम बनाओ, एक कागज लो, दो कॉलम, एक तरफ लिखो जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है मन में। मन कहता है कि मुरली का चिंतन आज से नहीं, मैं कल से चालू करूँगा, ठीक है। अब उसको लॉजिकली समझो क्या है, क्या क्या मन में हो रहा है, वो पूरे वाक्य को उसी रूप में लिखना है कल से। फिर इधर लिखो बाबा इसके लिए क्या कहेंगे, बाबा खुश होगा ये देखकर, कल से करने वाले हो बाबा क्या कहेंगे, कल से क्यों आज से क्यों नहीं। उसको पूरा उसका डिसेक्शन करना है, एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। कोई भी चीज़ दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ वो लिखो और फिर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दूसरा मेरा आज मूड नहीं है ये इधर लिख दो, मेरा आज मूड नहीं है, एक्सरसाइज करो ना थोड़ी, मेरा आज मूड नहीं है, अब उसको करो। अच्छा इसका मतलब मेरा मूड एकरस नहीं है, इसका मतलब मेरा मूड बदलते रहता है, और बाबा क्या चाहता है, ऐसा चाहता है। इधर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लिखो, कोई भी वाक्य हो, कोई भी, आज मुरली ना मुझे तो इच्छा हो रही है सोने की, अच्छी बारिश आ रही है बाहर, वीर तुम अड़े रहो रजाई पर पड़े रहो तो आज वीर बनने की इच्छा है उसका दो जो भी मन में आता है, एक इधर लिखना है एक पेपर में और उसका उधर दूसरा लिखना है। छोटे चिट पेपर है क्या, चिट पेपर्स इतने इतने जितने लोग हैं उतने, एक एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छा है, या तो कल करेंगे नहीं तो, हाँ हाँ करो करो, उसके चार 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 और सबको एक एक दे दो। तो ये सबसे पहली मेथड, इसको कहते हैं रैशनलिस्टिक सेल्फ टॉक टू कॉलम मेथड। जो भी मन में आता है उसको लिखो और उसका विश्लेषण करो उधर, मन ही पहले लिख दो, तीन चार संकल्प लिख दिए छोड़ दिए, अब इधर का जो कॉलम है एकांत में कहीं जाओ, छत पर जाओ, गार्डन में जाओ, या वॉक के लिए निकल जाओ, जे से निकालो, वो पढ़ लिया अंदर रख दो, अब जाओ 10 मिनट थोड़ा चिंतन करो उसके ऊपर। माय थॉट एंड लॉजिक, रैशनल, रैशनलिटी बिहाइंड इट, मेरा ये विचार है, विचार क्या है कि आज मूड नहीं है, आगे लिखो, भगवान ये सुनेगा तो वो क्या कहेगा। तो इसको कहते हैं ये एक अच्छी मेथड है, टू कॉलम मेथड। दूसरी मेथड है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सबको पता ही है, जिसको सोमान कहते हैं, पर इसको वो सोमान के जो हमारे रेडीमेड स्टेटमेंट्स हैं ना सारे अब तक वाले, उसको थोड़ा बाजू रख दो, शब्दों को चेंज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान कहते कहते ही नींद, उसको थोड़ा चेंज करो, मैं पावरफुल हूं, ये चेंज हो गया, शब्द बदल गए। हाँ तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, बहुत पावरफुल पावरफुल महावाक्य मुरलियों से निकाल के रखने अलग से, या तो अपने खुद ही क्रिएट करो, पर रहने चाहिए। आलस और मुझ में हो ही नहीं सकता, ये आलस हो ही नहीं सकता, ऐसे रिजेक्ट कर देना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। 2 बजे उठना सुबह, ये कोई कठिन बात है? एकदम सहज है मेरे लिए। अपनी खुद की भट्टियां करनी है। यहां जो भट्टी हो रही है ये आपकी भट्टी नहीं थी, यह सार्वजनिक भट्टी थी। सार्वजनिक भट्टी का रूपांतरण यदि व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो ये यहां आना और भट्टी करना व्यर्थ हुआ। यह आपकी भट्टी नहीं थी, यह तो सार्वजनिक भट्टी थी। यह आपका दिया हुआ प्रोग्राम नहीं था, यह दिया हुआ था किसी और का, रेडीमेड था। ये आपको अपनी भट्टी खुद तैयार करनी है। ये भट्टी आपने की, अब यहां से जाने के बाद दिस भट्टी सार्वजनिक भट्टी कन्वर्ट हो जानी चाहिए व्यक्तिगत भट्टी में, और व्यक्तिगत भट्टी जो होगी वो गुप्त होगी, किसी को भी ना पता चले हम कौन सी भट्टी करने वाली, क्योंकि वो भट्टी हमारी अपनी होगी। हमें अपनी कमियां, हमें जितना पता है दूसरा और किसी को भी नहीं पता। डॉक्टर को थोड़ी ना पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं, क्या कहो बताओ क्या क्या है, 4-5 चीजें बताते हैं। कई सारे पेशेंट्स तो भूल ही जाते हैं वहां आने के बाद क्या बताना है। कई लोग लिख के लाते हैं तो याद रहे कम से कम, ये तकलीफ है। और कितनी भी बताए तो भी कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। उसी तरह हमें अपनी बीमारियों के बारे में, अपने सिम्टम्स का हमें जितना पता है किसी और को पता नहीं है, इसलिए मेरी भट्टी अपनी अलग होगी। हमारी आदत है रोने की, आज की मुरली में ना रोते क्यों, रोने से क्या फायदा, ओके वापस आने वाला है क्या, गया तो गया, मम्मा काका वो वापस आएगा क्या, जिसको जाना था गया। अब रोने का संस्कार है पर ये कोई इतना आसान नहीं है कि मुरली सुन ली आज की और गया, ये काम करना पड़ेगा। इसलिए अपनी 21-21 दिन की भट्टियां निर्माण करो। 21 दिन की एक पूरी हुई, अब दूसरी 21 दिन की, 21 दिन की रोने की भट्टी, रोना प्रूफ की भट्टी, रोने की नहीं। अपनी अपनी अलग, किसी को बुरा लगने की बीमारी है, कोई कुछ बोलता है तुरंत बुरा लगता है, छुई मुई, टच मी नॉट, एकदम फीलिंग आ जाती है और इतनी गहरी आ जाती है फीलिंग कि व्यक्ति भूलता नहीं है उस बात को, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था, मुझे कहा था गेट आउट, अभी भी याद है उसको, तूने मुझे ऐसा कहा था मैं भूलूंगी नहीं, चाहे उसके बाद तुमने कितनी मदद की हो, तो ये तुमने कहा था, भूले नहीं है। अपनी 21-21 दिन की नई नई भट्टी है, और भट्टी उस पर करनी है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो गुप्त हो, किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना हो उस भट्टी की। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यदि भोजन है तो उस पर भट्टी करो, फिर दिन रात खाऊं खाऊं क्या खाऊं और किसको खाऊं यही विचार चलते रहते हैं योग में, उस पर ही भट्टी करो। अमृत वेला नहीं हो रहा है, संकल्प करो कि आज के बाद 2 बजे के बाद उठना अर्थात आलस की निशानी है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात उनके लिए सुबह 2-2:30 के बीच उठना है, तभी तो कहीं जाके योग का चार्ट बढ़ेगा। शाम को कहाँ हल्का फुल्का योग होता है, दिन भर तो बात ही मत पूछो, कारोबार इतना है, धंधा दोरी, गोरख धंधे इतने सारे है, वो आपके ऊपर है कितना भी करो। अमृत वेला 2 बजे चालू होता है, दैट्स इट, तो अमृत वेला 2 बजे चालू होता है, 2 से बाद में उठना अर्थात आलस। और ये करने के लिए सारी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, इतना आसान काम नहीं है, और ये 4 दिन का काम नहीं है, 5 दिन का काम कर लिया हो गया, जीवन पर्यंत स्वभाव बन जाए, संस्कार बन जाए, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, अपने आप आँख खुले, चाहे फिर आगे कितने भी बजे सो जाओ तो भी उतने ही बजे आँख खुले, ऐसा अभ्यास। इसके लिए तो पूरा दिनचर्या को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, भोजन के समय को चेंज करना पड़ेगा, रात को जो करते हुए सो रहे वो सारी क्रियाओं को बदलना पड़ेगा, तब कहीं जाके स्वतः सहज आँख खुलेगी। तो ये भट्टी है आलस से मुक्त, नहीं तो यही तो आलस है। 2 बजे उठते हैं भी है तो क्या होता है, बारिश आ रही है, आहा वीर तुम अड़े रहो, रजाई पर पड़े रहो, उठने की इच्छा नहीं होती है, सर्दी के दिन और आ रहे हैं, फिर तो और ऐसा लगता है कि एक बहन कहती थी सुबह मैं उठ तो जाती हूँ, देखती हूँ 4 बज रहे, परंतु मैं स्वप्न में हूँ और स्वप्न में मेरी बाबा से मुलाकात हो रही है। बाबा एकदम सामने है, मैं और बाबा सूक्ष्म होते हैं, तो उठना चाहिए मुझे कि नहीं उठना चाहिए? मतलब अगर उठ जाऊं तो ये जो बाबा से जो एकदम नजदीक का अनुभव हो रहा है वो तो टूट जाएगा ना। और मतलब ऐसे आंखें बंद है, एकदम ऐसे हल्की सी नींद में हूं और स्वप्न चल रहा है। मतलब एकदम दिखाई दे रहा है बाबा, एकदम ऐसे आनंद अनुभव हो रहा है, ये सब माया है। उठो बाबा, ध्यान को भी माया कहते हैं, तो ये क्या कहां से लाए? तो सबसे पहला बताया 2 कॉलम टेक्निक, दूसरा बताया पॉजिटिव असर्शंस, तीसरा है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एक पेपर बनाना, उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना कि 21 दिन के लिए मैं ये करने वाला हूं, और नीचे अपनी साइन। स्टैम्प पेपर मिलता है उस पे कर लेना, नोटरी साथ वकील का स्टैम्प ले लो उस पर। और दूसरा और एक अगली टेक्निक है रिमाइंडर, छोटे छोटे रिमाइंडर, वो पेपर आता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा निकलता है और चिपका के रखते हैं, हाँ स्टिकी नोट्स, वो स्टिकी नोट्स अलग अलग अपने कमरे में सब जगह लगा के रखो, कहीं पर भी अपने, ये पर्सनल भट्टी है हमारी, अपने को याद दिलाने के लिए कि आज भट्टी का मेरा दूसरा दिन है, दूसरा दिन 2 बजे अमृत वेला, तीसरा दिन 2 बजे अमृत वेला, दिन भर अलग 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 जगह चिपका कर रखो स्टिकी नोट्स, रिमाइंडर्स, अपने आप को रिमाइंड कराना है, कहीं पर भी चिपका। हम लोग MBBS में थे, वो हमारा जो हॉस्टल में थे तो बाथरूम था ना, जो बाथरूम और वो सब पे सारे के सारे लिख के रखते थे लोग, मलेरिया ट्रीटमेंट साइन सिम्टम, पूरी दीवारें भरी रहती थी फॉर्मूला ड्रग्स साइड इफेक्ट्स और वो सब 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 सब। तो याद करते रहना इसमें, ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है, नहीं तो हम क्या करते हैं, भूल जाते, हमारा मन भूल जाता है। अपने आप को ही रिमाइंड कराना है, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना कि ये तुमको करना है, तुम भूले कैसे? टैटू कई एक टेक्निक है जिसको कहते हैं मॉर्निंग राइटिंग्स, मॉर्निंग नोट्स। कई लोगों की आदत होती है, जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो सुबह सुबह 2 बजे उठते हैं और लिखना चालू करते हैं, दिन में नहीं लिख पाते वो, सुबह सुबह लिखते हैं स्टोरीज, फिल्म की स्टोरी लिखनी है सुबह सुबह, स्क्रिप्ट सुबह लिखते हैं, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो इसमें भी सुबह सुबह अपने आप को रिमाइंड कराओ कि मेरी ये भट्टी चालू है, न रोने की न दुखी होने की, ये भट्टी चालू है स्थिर, मेरी भट्टी चालू है 8 घंटा बैठकर योग करने की। ये बहुत बड़ा ऊंचा टारगेट है, कम से कम 5 तक तो पहुंचो या 4 तक तो पहुंचो, अभी तो एक हार्डली आधा घंटा सुबह या 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को पूरा हो गया, उसे में ही तृप्त है। किसी को नींद आती है बहुत, अलर्ट बैठने की भट्टी रखनी है, बैठो आधा ही घंटा पर फुल अलर्टनेस में, नींद में ना जाए हमारा, नींद आए ही ना, क्यों नींद आ रही है? अगर नींद आ रही है तो कारण ढूंढो, कुछ तो कारण होगा, क्यों दूसरों को आकर मुझे कहना पड़ता है सो नहीं? योग में बैठते ही नींद आनी चालू हो जाती है, आंखें बंद रहती है, बस क्या कर रहे हैं किसको पता नहीं, पर इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर है कि 2 बजे उठने से अच्छा तो 3 बजे उठो, फिर कम से कम नींद तो नहीं होगी, नींद कम हो रही है इसका मतलब, एक कारण ये भी है। फिर जो कुछ करना है वो धीरे 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 आगे बढ़ना है, एकदम करने जाओगे तो फिर वो ठीक नहीं होता है, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, अपने शरीर को देखते हुए संभालते हुए। तो अगली टेक्निक है रिवॉर्ड, खुद को रिवॉर्ड देना, कुछ कर लिया अच्छा तो अब अपने आप को शाबाशी देना कि हाँ बहुत अच्छा किया, एक दिन तुमने करके दिखाया, रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए तुमको, एक दिन करके दिखाया है तुमने, शाबाश पैट, बहुत बढ़िया, वाह रे मैंने ये कर दिखाया, इच्छा नहीं थी, बिल्कुल दर्द हो रहा था आज, लग रहा था नहीं नहीं हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे आज, आज तो दर्द है ना क्यों करें, करके दिखा देना। ये किसी और को दिखाने के लिए, ये हमारी सेल्फ विक्ट्री है, अपने लिए विक्ट्री है। खाने की इच्छा नहीं फिर भी खा के आ गए। क्या करें जो इस आलस से मुक्त हो? इसमें कुछ चीजें स्वयं को रिमाइंड करानी है। सबसे पहले स्वयं की स्मृति, मैं हूं कौन। दूसरी अपने कर्तव्य की स्मृति, मेरा कर्तव्य क्या है। तीसरा मेरा लक्ष्य क्या है। चौथा बाबा ने आज्ञा क्या दी है उसकी स्मृति है। आज कहा ना, आज्ञा नहीं मानी बाबा की, धर्मराज है वो, सजाएं खानी पड़ेगी। अगला समय की स्मृति, छठवा पनिशमेंट की स्मृति, और सातवा क्या, और एक बताओ स्थान। ठीक है, नहीं थोड़ा डरावना चाहिए। विनाश, ये सात। सबसे पहले अपने आप को आलस से यदि मुक्त करना है तो अपने आप को रिमाइंड कराओ मैं कौन हूं। ज्वालामुखी योगी हूं, आग हूं, आंख कड़कती बिजली हूं। अपने आप को ये सारे सम्मान दो। हीटर हूं, हीटर जहां मैं खड़ा हूं रूम गर्म। सम्मान। दूसरा अपने कर्तव्य की स्मृति, मैं किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, 10 साल से क्या कर रहा हूं, 20 साल से क्या कर रहा हूं, क्या वही कर रहा हूं जिस लिए मुझे भेजा गया था धरती पर। तीसरा लक्ष्य क्या है मेरा, कितना लक्ष्य के नजदीक जा रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं, नजदीक जा रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं। सबसे ज्यादा इस वर्तमान समय ब्राह्मणों में भी बहुत हलचल चालू है। कितने कम होंगे जिनको स्मृति है पुरुषार्थ की। आधे से ज्यादा बिजी है किस में, काम करने में। उसको वो नाम देते हैं सेवा, वो सेवा भी नहीं है, कुछ और ही है। एक बहुत बड़ी बहन अपना अनुभव कभी सुना रही थी कि वो कभी ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी तो उसके सामने एक बहुत योगी तपस्वी सन्यासी बहन बैठी हुई थी, दूसरे संस्थाओं की, एकदम शांत बैठी। और ये सारी छोटी बहनें थी, ये अपना चालू हो गई, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। बाबा कहते हैं ट्रेन में सेवा करो। इसको पकड़ पकड़ के पर्ची दे रहे, वो दे रहे, ये कर रहे, एक मिनट भी स्थिर नहीं है बिल्कुल। और वो चुपचाप बैठी हुई। आखिर वो बहन ने इस बहन से पूछा, ये बहन कह रही है कि ये बहुत पुरानी बात है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसने कहा सेवा। क्या कर रहे, सेवा। वो बहन ने कहा तुम, ये सेवा नहीं है, तुम्हारा प्रचार है केवल, बस इसको सेवा मत कहो, दिस इज जस्ट प्रोपोगंडा, मार्केटिंग। जिसको हम सेवा कह रहे हैं और जिसके लिए इतना बिजी है दिन रात, उसकी मीटिंग्स, उसका प्लानिंग, उसका ये, उसका वो, क्या वास्तव में वो सेवा है? क्या मन की स्थिति कैसी रहती है उस समय? सेवा तो है परंतु अंदर से लड़ाई चल रही है दो आत्माओं की, आपस में मिलता नहीं है उनका। तो यहाँ कहाँ सेवा और कहाँ क्या, ये खाली नाम है, सेवा का बैनर है, अंदर तो सूक्ष्म लड़ाइयाँ चल रही है, ये सेवा नहीं है। पोस्ट, पोजिशन। अगला क्या बताया, एक तो स्वयं की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, लक्ष्य की स्मृति, बाबा की आज्ञा है। जब हम ये भूल जाते हैं तब आलस हो जाता है, फिर वैराग भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। आज्ञा है क्या क्या है उसकी, ऑर्डर्स, ये करो, याद है हमको, कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि हम इस पर, इसके लिए मुरलियों पर काम करना पड़ेगा, रोज की मुरलियों से ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। क्या ऑर्डर है आज की मुरली में, ऑर्डर, ये नहीं कि देखो करना हो तो करो, बाप राय देते, वो नहीं, सजेशंस नहीं, फतवा, फरमान, ऑर्डिनेंस, ये किया तो वो होगा, दंड मिलेगा तुमको अगर ये नहीं किया तो। अगला समय, कौन सा समय चल रहा है? वो व्यक्ति को केवल इतना सुना, एक छोटी बच्ची अपने पिता से कह रही वासनाओं को जला दो, वैराग जाग गया। हम रोज इतना सुनते कुछ भी नहीं, वैराग जागता है क्यों, इतने जड़ बुद्धि क्यों हो गए, वैराग जागता ही नहीं। अगला बताया सजाए, फिर बहुत रोना पड़ेगा, मांगेंगे कि मुझे थोड़ा समय दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। और लास्ट विनाश सामने खड़ा है। फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अपनी आलस की पॉइंट्स निकालने, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं एक्चुअली वो आलस है, जिसको हमने कहा कि मेरे शरीर को ये सूट होता है, वो शरीर को नहीं सूट होता है, वो मन का एक ये है, हाँ कंडीशनिंग है मन की, या कहो जो हमने अपने आप को रिपीट करा करा के वो सिखा दिया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है, पर वैसा है नहीं। हमारी नेचुरल अवस्था जो है बहुत ऊंची अवस्था है, सहज राजयोग की अवस्था, सहज अशरीरीपन की अवस्था, देहवान की ग्रहचारी उसमें ना हो, आज की मुरली वो अवस्था। तो आज वैराग के इस चैप्टर को यहाँ पूरा करते हैं। हाँ वो दे दो, चलो एक एक दे दो सबको, दे दिया क्या? अभी आप सबको इसका एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाना है, और कितना आपको 3 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट में उसको ऐसा बनाओ कि जो वो उड़ सके, फ्लाई कर सके। लिखना नहीं है उसके ऊपर, बनाओ उसका कुछ तो, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाई हाँ इसका बनाओ, और मुझे भी एक दे दो 3 मिनट में, जिसका सबसे ज्यादा जाएगा वो जीतेगा। जल्दी बनाओ, अच्छा बनाओ, पर कैसा भी बनाओ, अने एक एक मिनट और, ज्यादा टाइम नहीं देना है। रेडी हो गया? कितना टाइम लगा सबको? 1 मिनट लगा। सब ये ऊपर करके दिखाओ, 2 लोग 3 लोग पास है, अभी फेंको। सबसे दूर किसका गया? सबसे, हमने कहा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड है ये बन गया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये सबसे दूर जाएगा। हमने ये तो कहा ही नहीं था कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, हमने कहा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये। तो चीजें है बहुत सरल, पर हमारा माइंड किसके लिए ट्रेन हुआ है? जो हमको सिखाया गया है बचपन से, जो कंडीशनिंग हुई है, वही हम करते हैं, करते आ रहे हैं। हमारे मन किसी अलग रीति से सीखा ही नहीं, क्योंकि इसको अलग रीति से भी किया जा सकता है। तो पास कैंडिडेट सुशील भाई, आपका नाम अबीर भाई और माता जी मंजू भाई, तो ये 3 चीजें नहीं किया है ना, पहले नहीं किया है किसी ने, ये सबसे बेस्ट विधि है, इसको पूरा हाथ में क्रम्पल, ये सबसे फास्ट। तो ऐसी हर चीज को करने की एक अलग विधि है। हम अपनी कमी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो हमको सिखाई गई है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। एक दूसरे नजर से उसको देखना, दूसरे नजरिए से, कि कोई एक कुछ तो मेथड होगी इसको जीतने की, जो हमने अभी तक ट्राई नहीं किए। हमारे प्रश्नों को के उत्तर मुरलियों में अब तक आए ही नहीं है, ये रियलाइजेशन तक पहुंचो। हमारे मन का जो प्रश्न है उसका उत्तर अब तक किसी भी मुरली में नहीं है। पहले कम टू दिस, हमको ये ट्रेन किया गया है कि तुम्हारे सभी प्रश्न का उत्तर मुरलियों में है, नहीं मिल रहा है तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम नहीं देख पा रहे, ये ठीक है एक रीति से, परंतु ये भी तो एक मेथड है, ऐसा कर दिया उसको, ये भी तो एक मेथड है। बाबा कहते हैं नवीनता, ये भी एक नवीनता है। हाँ पर किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इसको ऐसा भी किया जा सकता है, ये भी उड़ने जैसा ही है ना। तो उसी तरह जीवन में जो कुछ है, इस ब्राह्मण जीवन में जो भी समस्याएं, कमी कमजोरी है, उनको भी जीतने की कोई एक विधि अब भी है जो हमने ट्राई नहीं की है। हमने सब कुछ किया, 1000 मेथड्स ट्राई कर चुके, जो जो मुरलियों में आया सब कुछ किया है, पर एक मेथड अब भी है एक, वो शायद हमको पता चल जाए छोटे से बच्चे से, किसी ना किसी, वो जरूरी है मुरली से पता चले, वो कहीं और से धक से एकदम पता चल जाए, अरे ये ऐसा होता है, अज्ञात समय में पता चलेगी, वो मेथड होगी उसको जीतने की। तो आज की ये वैराग्य सभा क्या क्या ये पोएम, ये तो कहीं पर भी आप मिल जाएगी आपको, आप अपनी बनाओ। अच्छा ओम शांति।
है।